इसके बाद अब बिल्कुल निजी जिंदगी, प्राइवेट लाइफ। आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी प्राइवेट लाइफ बहुत छुपी भी होती है, लेकिन अल्लाह के नबी चूंकि नबी थे तो आपकी एक एक चीज खुली हुई है, क्योंकि आपका उठना बैठना, बीवियों के साथ काम करना, बात करना, ये दीन का हिस्सा था। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा। अक्सर बड़े लोग वो कहलाते हैं जो पब्लिक लाइफ के लिए एक मस्नूई किरदार का चोगा पहने रहते हैं, जो निजी जिंदगी में उतर जाता है। बाहर देखिए तो बड़ी आन बान है, घर पहुंचे तो इंतहाई पस्ती में जा गिरे। बाहर सादगी और तवाजो दिखाई दी, घर को पलटे तो ऐश और तनम में, यानी नेमतों में डूब गए। पब्लिक और प्राइवेट जिंदगी में किसी शख्स के हाथ जितना ज्यादा इख्तलाफ और फासला होता है, उतना ही इसका मर्तबा अदना होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो एक ही रंग घर में भी है और घर से बाहर भी। आप लीडर्स का नाम सोचिए, कोई भी सियासतदान है, कॉमेडियन है, आर्टिस्ट है, आप देखिए कि उनकी बाहर की और घर की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन अल्लाह के नबी की घर की जिंदगी कैसी थी, आइए जरा देखिएगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह से किसी ने दरियाफ्त किया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते थे? उन्होंने जवाब में फरमाया, आप आदमियों में से एक आदमी थे, यानी जैसे मर्द होते हैं वैसे थे, अपने कपड़ों की देखभाल खुद ही कर लेते। बेगम के सर पे सवार नहीं रहते थे कि मेरे मोजे किधर हैं और मेरा बटन की टूट गया। हाँ, बेगमात खुद ही ख्याल रखती हैं, लेकिन मर्द जो बीवियों को हर वक्त खपाते रहे इन बातों में, वो भी अच्छे मर्द नहीं है। और अच्छी बीवियां क्या है कि वो ख्याल रखती हैं, और अच्छे मर्द कौन है जो खुद ख्याल रखते हैं, ये फर्क है। बात समझ गए? अब इसका ये नहीं मतलब कि आपने ख्याल नहीं रखना या बुरी बात है, मतलब ये कि बीवी टेक केयर करे लेकिन मर्द उसको अपना हक ना समझे। देखभाल कैसे करते थे कि इनमें से कोई जूं वगैरह ना चढ़ आई हो, बकरी का दूध खुद धोते और अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेते, नीज अपने कपड़ों को खुद ही पेबंद लगा लेते, अपने जूते की मरम्मत कर लेते, और ये कि अपने डोल को टांके लगा लेते। डोल क्या होता है? मश्क, चमड़े की होती थी, तो कहीं से फट जाती तो उसको सी लेते। बोझ उठाते, जानवरों को चारा डालते, कोई खादिम होता तो इसके साथ मिलकर काम करा देते, मसलन इससे आटा पिसवा देते, कभी अकेले ही मशक्कत कर लेते। बाजार जाने में आरत ना थी, खुद ही सौदा सलफ लाते और जरूरत की चीजें कपड़े में बांध कर उठा लाते। घरों में कैसे होने चाहिए मर्द? काम करते। किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी घर में होते तो क्या करते? फरमाया, हमारे साथ बात करते, हंसी मजाक करते, काम करवाते। यानी आपका घर में आना, कोई घर में कर्फ्यू नहीं लगा देता था कि चुप कर दो, शौहर आ गए, गुस्से वाले, नाराजगी वाले, नहीं, बहुत सॉफ्ट थे आप अपने घर वालों के साथ। लोगों ने यह भी दरियाफ्त किया कि रसूले खुदा जब घर में होते तो क्या रंग रहता? हजरत आयशा बताती हैं, अब देखिए कितना खूबसूरत है उनका आपके ऊपर कमेंट है। फरमाया, अलैनन्ना सबी समा दाहेकन, सबसे ज्यादा नरम खू मुतबस्सम खंदा जबी। नरम क्या? सॉफ्ट। नरम खू सॉफ्ट, मुतबस्सम स्माइली, हंसते हुए, और खंदा जबी पेशानी खुली हुई है। सच बताइए कि आम तौर पे घरों में मर्दों का यही अंदाज होता है? गुस्से वाला नहीं, जूती किधर है? आते ही घर में ऐसे लगता है जैसे कोई बॉस आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नरमी की शान ये थी कि कभी किसी खादम को झिड़का नहीं। हक यह कि रसूले खुदा से बढ़कर कोई भी अपने अहलो याल के लिए शफीक ना था। ये मुस्लिम की रिवायत है। आपने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली वाना खैरुकुम लि अहली, तुम में से सबसे अच्छा मर्द वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। देखिए, सेक्रेटरी के साथ तो सारे बॉस अच्छे होते हैं, कुलीग्स के साथ तो हेलो हाय हाउ आर यू, तो घर आके क्या हो जाता है? घर में सबसे अच्छा अखलाक होता है मर्द का। घर वालों से आपका अखलाक अच्छा है तो आप सबसे अच्छे हैं, और आप सबसे अच्छे थे। एक बार इमाम हुसैन के पूछने पर हजरत अली ने बयान किया कि रसूल खुदा घर में आते तो अपना वक्त तीन तरह की मसरूफियतों में सर्फ करते। इसको नोट कीजिएगा। कुछ वक्त अल्लाह की इबादत में सर्फ होता, यानी सुन्नतें पढ़ते, नवाफिल अदा करते। कुछ वक्त अहलो अयाल के लिए था, और कुछ वक्त अपने आराम के लिए, यानी कुछ वक्त अल्लाह का हक हो गया इबादत में, कुछ वक्त घर वालों के लिए, और कुछ अपना आराम था। फिर इन्हीं औकात में से एक हिस्सा मुलाकातियों के लिए निकालते, जिनमें मस्जिद की आम मजलिस के अलावा खसूसी गुफ्तगु करने वाले अहबाब या मेहमान आकर मिलते, या कुछ लोग जरूरियात तो हाजात लेकर आते। देखा जाए तो आराम के लिए बहुत ही कम वक्त रह जाता, यानी खास लोगों को अपने घर में आने देते थे जिनके साथ क्लोज सर्किट में कोई बात करनी होती थी। अजवाज मुताहरात के नान नफके, नान नफका क्या होता है? नीड्स, बेसिक जरूरियात, और मुख्तलिफ जरूरियात का इंतजाम भी आपको करना होता। फिर इनकी तालीम और तरबियत भी आपके जिम्मे थी। इसको नोट कीजिए, मर्द का फर्ज है कि अपनी बीवी को तालीम दिलवाए, तरबियत करे, और खुद ना दे सके तो छोड़कर आए भेजे, और उल्टा वो मर्द जो हर वक्त ताना ही देते फिर जाना शुरू कर दिए। कब आओगी, कितनी देर रह गई है, ये अच्छी मर्द नहीं होते। आप अपने मर्दों को इस बात का एहसास दिलाएं कि ये जो हम तालीम और तरबियत लेने जाते हैं ना, ये हम आपका काम करें। अगर हम दीन सीखने कहीं जा रहे हैं तो उसका फायदा किसको होता है? घर को। घर में बच्चे हैं तो मर्द के बच्चे अच्छे पलेंगे ना। औरत सीखेगी तो कौन सीखेगा? बच्चा। तो बच्चा सीखेगा तो किसकी नस्ल संवरेगी? मर्द की संवरेगी। तो लिहाजा गिल्ट में ना रहे, एहसास कमतरी ना रखा करें, हम पढ़ने लग गए हैं तो हम घर वालों से छुपाएं या शर्मिंदा ही बैठे रहे। नहीं, पूरे हक के साथ कहिए, हम अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ इंशाल्लाह तालीम और ताल्लुम का काम जिंदगी के आखिरी दिन तक करेंगे। और किसी शौहर को हक नहीं है अपनी बीवी से इस नेकी को छीनने का। सिर्फ आप उसको करते कैसे प्रेजेंट है ये देखने की बात है। हाँ, इसको एस्केपिज्म ना बना लें कि घर के काम छोड़ के और उनको इग्नोर करके ये करें। इस पे कोई मर्द क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, सच बताऊं आपको। ये बेसिक नीड है एक औरत की, तो लिहाजा इस पे जितना आपको यकीन होगा उतना आपके घर वाले आपके साथ कॉपरेट करेंगे। फिर इन्हीं के जरिए से तबका खवातीन के इसलाह का काम जारी रहता, यानी आपकी बीवियों को आप सिखाते तो बीवियां फिर दूसरी औरतों को सिखाती। औरतें अपने मसाइल लेकर आती हैं और अजवाज मुतखरात की मार्फत दरियाफ्त करती हैं। ये बात वह पर्सनल क्वेश्चन होते थे, कोई निजी मामला थे, अब नबी सल्लम से डायरेक्ट नहीं पूछ सकती थी औरतें, तो वह आपकी बीवियों से पूछती, फिर आपकी बीवियां अपने शौहर से पूछ कर आपको बताती। इसके बावजूद घर की फिजा को आपने कभी खुश्क और बोझल ना बनने दी। इसको नोट करें, अपने लिए अमल लिखें। घर का माहौल कभी खुश्क ना हो, बोझल ना हो कि घर में आने से पहले मर्द का भी दिमाग खराब हो जाए या बच्चे भी के घर आएंगे तो बस शुरू हो जाएगा। देखिए, घर और हॉस्टल में फर्क होना चाहिए। दो इंतहाएं हैं आज के दौर में, एक तो छोड़ दिया बच्चों को ऐसे कि जैसे किसी खुली जगह पे छोड़ा है, सारे घर में उछल रहे हैं कूद रहे हैं, कोई कुछ ना कहे नहीं जी नहीं इनको खेलने दो बच्चे हैं, और दूसरी सूरत है कि हर बात पे रोक टोक। बच्चों को अदब सिखाएं, बड़े बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, ये है घर का बेस्ट माहौल। अच्छे तरीके से लाइट माइंडेड, आपकी बेटियां आपसे बातें करें, आपके बच्चों को आप में दिलचस्पी हो। लेकिन वही बात है कि घर बड़े हुए और हर कमरे में टीवी कंप्यूटर पहुंच गया, याद भी नहीं होता घर में बच्चा है कि नहीं। मैं ऐसे ऐसे घरों में आती जाती हूँ जिधर फोन पे पूछते हैं बेटा किधर, वो कहता है अम्मा अपने कमरे में हो। अच्छा, नीचे आ जाओ, खाना खा लो। व्हाट्सएप से पता चलता है ये बेटा इस वक्त किसी ग्रुप में मैसेज कर रहा है, तो ये ऊपर बैठा है, ये नीचे आ जाए, ये हालात है। यूज कीजिए आप। देखिए, मैं एक वीडियो देख रही थी, अंग्रेजों की थी, नॉन मुस्लिम थे, तो उन्होंने बताया था कि सेलफोन को यूज करने का बेहतरीन तरीका, तो वो दिखाते हैं घर है, वहां तो आपको कहता है सभी काम करते हैं औरतें भी मर्द भी, तो पहले मर्द घर में आया हुआ है शायद, जब बच्चे हैं माँ आती है घर में, तो घर में आके जूते उतारती है ना जहां बाहर चीजें उतार के, तो अपना सेलफोन वहां एक छोटी सी बास्केट रखी उसमें डाल देती है। फिर वो दिखाते हैं कि उन्होंने अपने घर में ये रूल बनाया है कि अब सारे दिन के बाद आए ना तो मर्द ने भी अपना सेलफोन और बीवी ने बंद कर दिया है कि अब हम अपना टाइम बच्चों के साथ गुजारेंगे, खाएंगे पिएंगे, कि हर वक्त फोन बच्चा भी तो देख रहा होता है ना, कि मैं चार दफा बुलाता हूं तो माँ जवाब नहीं देती, अम्मी अम्मी, और चीखेंगे फिर पुकारेंगे जी किधर हो, और सेलफोन की बेल बज जाए माँ की जान निकल जाती, देखो देखो किसका फोन है। तो बच्चे को एहसास कमतरी होगा कि मैं काश सेलफोन ही होता, क्योंकि माँ इसको जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। तो ये सारी चीजें घर वालों को दूर करती हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ईस्ट वेस्ट जहां भी अल्लाह मुझे लेके, अमेरिका कनाडा इस तरफ से जिधर भी गई हूँ यूरोप तक, मैंने एक चीज फील की है, जिनके घरों में जाकर मजा आता है या जिनके बच्चे अच्छे हैं, नाइस हैं, बहुत फ्रेंडली, यानी बुरे माहौल का कोई असर नहीं, उसके अंदर एक चीज कॉमन है कि एक तो घर में टीवी नहीं है, अगर है तो बहुत उसका यूज लिमिटेड है, और दूसरा कि घर के आपस में सब लोग मोस्टली आपस में मिलकर एक्टिविटीज करते हैं। माँ किचन में काम कर रही है तो बच्चा जब वो में से बर्तन निकाल रहा है, कोई कपड़े डाल रहा है, कोई कर रहा है, माँ काम कर रही है, बच्चे साथ फेर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, माँ बच्चे बेटे बेटियां दोस्ती के साथ में, शौहर साथ काम करते हैं, सफर में बैठे हैं, चलो अब तुम कुरान पढ़ो, अब तुम दुआ सुनो, अब तुम करो, अब तुम्हारी बारी। तो मैंने देखा है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह का टाइम देते हैं उनके बच्चे इंशाल्लाह कहीं जाके भी खराब नहीं होते। हमारे बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब हम उनको ओवरलुक करते हैं। ये बात बहुत बड़ी हकीकत है। तो ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी कि घर का माहौल दोस्ताना होना चाहिए। आपसे बात नहीं करेगा बच्चा तो किससे करेगा? आपकी बच्ची अपना कोई मसला जो उसकी नई जिंदगी में शुरू हो गया आपसे नहीं पूछेगी तो फिर किसी दोस्त से ही पूछेगी ना, तो दोस्त को जितनी अकल होगी वो उतना उसको मशवरा दे देगी। तो हमेशा अपने बच्चे बीवी घर सब के साथ नरमी रखें, और फील हो उस घर में, और जाके मजा आता है ऐसे घरों में। मैं अक्सर सोचती हूँ किन के घर जाके इंसान इंजॉय करता है, वो घर जहाँ शौहर बीवी बच्चे सब है, और वो क्या घर है, आपको गए वे घंटा हो गया, बेटी किधर है, वो ऊपर कमरे में है। अच्छा जी, ये कैसा मैनर है, आप भाग रही हैं, उठ रही हैं, काम कर रही हैं, बेटी को मेहमान है आपकी, यकीन करें मैंने माओ को कहते हुए सुना है कि ये हमारी बेटियां नहीं है, ये हमारी किराएदार है। एक माँ थी, वो ऐसा घर था कि नीचे मास्टर बेडरूम था, घर भी था और किचन भी नीचे है जो भी होता है, और ऊपर के फ्लोर में बाकी बेडरूम्स और चीजें हैं। तो वो कहती हैं, बच्चियां थी उनकी, सिर्फ बेटा नहीं था, और मियाँ बीवी, तो कहती कि सच बताएं हमारे घर का हाल है कि मैं जो खाना पकाती हूँ ना, सिर्फ मैं और मेरे मियाँ खाते हैं, खाना लगाती हूँ, आवाजें देती हूँ, नहीं आती बच्चियां, फिर उसके बाद हम दोनों खा पका के जू ही जाते हैं, कहती जब हम समेट के निकलते हैं तो फिर पाँव की आवाज आती है, फिर एक उतरती है, फिर वो कोई टोस्ट बटर कोई कुछ करके कहती बनाती है, अपना ऊपर ले जाती है। तो कहती ये मेरी किराएदार है, घर में मेहमान आए हैं, माँ की दोस्त हैं, मामी इज नॉट होम, खुदा हाफिज, जाओ मेरी जान छोड़ो। ये गलत तरीके हैं, हमारी माओ ने भी हमें ये नहीं सिखाए थे कि हम इतने पुराने नहीं हैं, लेकिन आपको पता है कि आंख के इशारे से माएँ अपनी बच्चियों को सिखाती थी, यूं जाओ टी चाय, हाथों से बच्चियां जानती थी चाय के साथ बिस्कुट भी लेके आने हैं, आजकल की बच्चियों को परवाही कोई नहीं है, ये गलत तरीका है। तभी तो फिर अगले घरों में जाकर वो अगलों को बदनाम करती हैं कि सास बड़ी बुरी है। यकीन करें हम लोग इन चीजों को नहीं मानेंगे तो हमारे घरों में सुकून नहीं आएगा, घर टूटेंगे, और दीन से ज्यादा मुहज्जब तरीका जिंदगी सिखाने वाला कोई स्कूल इदारा नहीं हो सकता। आप कनेड कॉलेज के हों या किसी बड़े कॉलेज के हों, वो आपको दुनियावी चीजें सिखा देंगे, लेकिन जो सुन्नत और जो खूबसूरत इस्लामी तरीके हैं वो इस जगह आकर मिलते हैं। अल्लाह ताला हमें इससे फायदा उठाने वाला बना दे। फिर इसी तरह घर में क्या करते थे ना, इसमें कोई मस्नूई अंदाज पैदा होने दिया, आर्टिफिशियलनेस नहीं होनी चाहिए घरों में, घर एक इंसानी घर की तरह था। अब एक दीनदार का घर कैसा होता है, जैसे इंसानों के घर होते हैं, कोई उनके घरों में ऐसा तो नहीं है माहौल के वहां जाकर भी लोग नमाजें ही पढ़ते रह जाएं, ऐसा तो नहीं है, वो खाते भी हैं वो पीते भी हैं, अल्लाह के नबी का घर इंसानों की तरह का घर था, जिसकी फिजा में फितरी जज्बात का मद्दोजजर रहता था, यानी अप्स एंड डाउन रहते थे, इसमें आंसुओं की चमक भी होती और तबस्सुमों, तबस्सुम कहते हैं स्माइल को, तबस्सुमों की लमानी भी होती, यानी शाइन चमक, मोहब्बतें भी कार फरमाती और कभी कभार रश्क का खिंचाव भी पैदा होता, परेशानियां भी रहती और तफरी के लम्हात भी आते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में आते तो नसीम के झोंके की तरह आते, यानी शौहर घर में आए तो ऐसे लगे कि खुशबूदार हवा का झोंका आ गया, और एक अजीब शगुफ्तगी फैल जाती, बातचीत होती, कभी कभी किस्सा गोई भी होती, और दिलचस्प लताइफ भी वकू पजीर होते, यानी शौहर और लतीफा सुनाए, और नबी और लतीफा कैसे हो सकता है, नहीं सच्चे लतीफे सुनाते थे, वल्गर नहीं होते थे और झूठ नहीं होता था। मसलन अपना एक वाकया हजरत आयशा बयान करती हैं कि एक मरतबा मैंने खजीरा गोश्त का कीमा करके पानी में पकाते और फिर इस पर आटा छिड़कते जो साथ ही पकते, जैसे हलीम होती है ना गोश्त और आटा और गंदम जौ डलता है, ये हरीसा भी इसको कहते हैं, कहती हैं मैंने ये पकाया तैयार किया, हजरत सौदा भी मौजूद थी, अब ये कौन है, आयशा की सौकन और नबी की दूसरी बीवी। आप पहले देखिए एक बीवी दूसरी बीवी के घर में आती थी, आज लोगों को बड़ा इतराज है नबी की शादियों पे, हालांकि वो एक दूसरों के घरों में आती थी, दोस्ती थी, शाम को मिलके बैठा करती थी, कोई बुरा तो नहीं लगता, मेरे जिम्मे ऐसे थे जैसे हमारे कल्चर में देवरानी जेठानी का ताल्लुक होता है ना, इसी तरह का ताल्लुक नबी की बीवियों का था, कुछ ना कुछ तो देवरानी जेठानी में भी होती है बातें, तो इतनी कुत उनमें भी हो जाएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे की दुश्मन नहीं थी। खैर हजरत सौदा उस दिन हजरत आयशा के घर आई हुई थी और रसूले खुदा दोनों के दरमियान बैठे थे, बेतकल्लफी की फिजा थी, मैंने सौदा से कहा कि खाओ, उन्होंने इनकार किया, फिर इसरार से कहा कि खाओ, उन्होंने इनकार किया, फिर इसरार से कहा कि तुम्हें जरूर खाना होगा, उन्होंने फिर इनकार किया, इधर से फिर कहा गया कि इसमें से खाओ वरना उठा के तुम्हारे मुंह पर मल दूंगी, हजरत सौदा ने भी हट दिखाई यानी जिद में आ गई कि नहीं खाऊंगी, हजरत आयशा ने खजीरे में हाथ डाला और वाकई हजरत सौदा के चेहरे पर लेप दिया। इस बेतकल्फी पर नबी सल्लम खूब हंसे और सौदा से कहा अब तुम भी इसके मुंह पे मलो ताकि हिसाब बराबर हो जाए, चुनाचे सौदा ने ऐसा ही किया और नबी सल्लम मुकर्रर यानी दोबारा हंसे। अब ये मैं नहीं कह रही कि आप ऐसा करें, लेकिन आपको इससे ये पता चल रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लम कितने अच्छे तरीके से अपने घर में ये मामला रखते थे, और हल्का फुल्का माहौल होना चाहिए घर में, लाइट माइंडेड होंगे तो इंशाल्लाह काम करने का ये शौक भी ज्यादा आएगा और आप ज्यादा से ज्यादा थकेंगे भी नहीं। एक मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो हजरत आयशा को नबी सल्लम के साथ शोखी के साथ बात करते पाया, जैसे बीवियां शौहर से कभी कर लेती हैं, गजबनाक होकर मारने को चले, कौन अबू बकर बेटी को मारे हैं कि तुम क्या कर रही हो अल्लाह के नबी के साथ, अल्लाह के नबी ने इनको ठंडा किया कि कोई खास बात नहीं है, इसी गुस्से में जनाबे सिद्दीक चले गए। इनके जाने के बाद आपने बड़े तीखे अंदाज में हजरत आयशा से कहा, देखा हमने तुम्हें उस शख्स से बचा लिया। कौन था वो शख्स? बाप। तो पहले दौर के बाप भी कितने अच्छे थे कि बेटियों के ऊपर नजर रखते थे कि ये ससुराल में जाके करती क्या है। आज के बाप तो उलट ही करेंगे कि हमारी बेटी तो मजलूम है और ससुराल नहीं, इसको पता नहीं क्या मिल गया और पता नहीं ये सारे इसके दुश्मन है। तो ये सारी चीजें आपको मुझे सिखाती हैं कि हमें जिंदगी को कैसे गुजारना है। घरेलू जिंदगी के इस फितरी उतार चढ़ाव को बाज़ लोग इस्लामियत के तसव्वुर से फरोतर यानी ऊपर पाते हैं। यानी अब ये बातें पढ़कर आपको भी लग रहा होगा कि अल्लाह के नबी इस्लामी नहीं थे, रिलीजियस नहीं थे। और खसूसन नबी सल्लम के घर का नक्शा कुछ ऐसा ही जहन में रखते हैं कि इसमें कोई गैर इंसानी पुतले रहते थे जिनमें ना कोई जज्बा था ना ख्वाहिश थी, हालांकि वो घर इंसानों का घर था और इसमें सारे इंसानी जज्बात काम करते थे, मगर इस घर में मासीयत ना थी। इसको नोट करें, सब कुछ होगा लेकिन गुनाह नहीं होगा। आज अल्लाह रहम करे घर में इंसान कम बोलते हैं और मशीनें ज्यादा बोलती हैं, और आवाजें ऐसी ऐसी घरों में उठती हैं सर में दर्द लग जाए, कुछ भी कहते हैं घर का फर्द है, बोलने दो इसको, कोई देख भी नहीं रहा तो बढ़ने दो। इसकी वजह से भी घरों से बरकत चली गई। इस लिहाज से वो नमूने का घर था। रातों को जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर होते तो अहलो अयाल से आम बातें होती, कभी घरेलू अमूर पर, कभी आम मुसलमानों के मसाइल पर, यहाँ तक कि कभी किस्सा कहानी भी सुनाते। एक बार आपने हजरत आयशा से उम्मे जरा की कहानी बयान की। इस कहानी में 11 औरतें अपने अपने खामदों का किरदार आपस में बयान करती हैं। ये बड़ी मजे की हदीस है, अगर आपने कभी पढ़ी है, लंबी सी हदीस है, लेकिन नबी सल्लम आयशा को कहानी सुना रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, तो उसमें ये बयान होती है। इनमें से एक औरत उम्मे जरा अपने खामद अबू जरा का मन मोहना किरदार पेश करती, यानी तारीफें कर रही थी अपने शौहर की। ये कहानी अदबी लिहाज से बड़ी दिलचस्प है। खात्मे पर नबी सल्लम ने हजरत आयशा से कहा, मैं भी तुम्हारे हक में वैसा ही हूं जैसा कि अबू जरा उम्मे जरा के लिए था। यानी आप कह रहे हैं कि अगर वो अपने मियाँ की इतनी तारीफ कर रही थी तो मैं भी तो अच्छा शौहर हूं ना। इसी तरह किसी दूसरे मौके पर कोई किस्सा सुनाया तो सुनने वालियों में से एक ने कहा, ये तो खराफा के किस्सों जैसा है। अरब में खराफा की एक रिवायती शख्सियत थी जिससे बहुत से खैरतनाक किस्से मंसूब थे। नबी सल्लम ने कहा, जानती भी हो कि खराफा की हकीकत क्या थी। फिर आपने खराफा की रिवायती शख्सियत का किस्सा भी बयान किया कि बनू अजरा के इस आदमी को जिन पकड़ कर ले गए थे और कुछ अरसे के बाद वापस छोड़ गए थे। क्या पता चला? रिलैक्स्ड सिंपल माहौल था। आप कोई बात इसके सुनने के दौरान सोच रहे थे, कोई कहना चाहें तो शेयर कीजिए। क्या आपके जिन में अल्लाह के नबी का मयार बना? क्या मुकाम गिरा के ज्यादा हुआ? मुझे तो ऐसे लगता है कि वो एक किरदार थे, चलते फिरते इंसान के जैसे लोग होने चाहिए। कई लोगों को अपने शोहरों में कीड़े नजर आ रहे होंगे। हमारा ये बड़ा मसला है, हम जब किसी के शोहर की खूबियां सुने तो हमारे बेचारे शोहर की और सख्ती आ जाती है। जजाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।